बहन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक बताया कि ईश्वरीय सेवा में अगर सफलता चाहते हो तो क्या चाहिए, स्वच्छ साफ दिल चाहिए। क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो दिल कहां है आप में से कोई बताएगा? दिल है, ये दिल तो साफ होता ही नहीं है, ये तो खून चलाता है ना। तो कौन से दिल पर? बाबा ने भी इसके पहले कहा था कि बाप के दिल में बच्चे समाए हुए हैं और बच्चों के दिल में बाप समाया हुआ है। तो आपका दिल कहां है? वो तो यहां तो मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा में मन है, बुद्धि है, संस्कार है। तो दिल कौन सा दिल है साफ, दिल कहां है? तो अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो यह आध्यात्मिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान नहीं है। भौतिक शरीर का जो दिल है वो हार्ट है, हृदय है, वो खून चलाता है। और आपको पता होना चाहिए आज के दुनिया में एक हृदय निकाल करके दूसरे को लगाते भी है, ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यहां जो आध्यात्मिक ज्ञान में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुभ बाबा आके कौन सी दिल की बात करता है? आत्मा के दिल। आत्मा का दिल का नाम है बुद्धि। इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ सोल। बुद्धि आत्मा का दिल है। बुद्धि के अंदर बाप की याद समाई हुई, याद किधर रहती है? बुद्धि में। अगर बुद्धि अंदर याद नहीं है तो उसको कहते बुद्धू, मैड कहते हैं, याद नहीं है। तो याद कहां रहती है? दिल में। तो आप पूछो, कोई भी सेवा अगर आप करते हो, बाबा के तन से करो, मन से करो, धन से करो, किसी प्रकार के भी, तो सेवा करते समय तो हमारे दिल में कौन है, किसकी स्मृति में रहकर सेवा करते हो? अगर सेवा करते समय शिव बाबा ने वादा किया है कि बच्चे अगर बाप के याद में रहकर आप कोई भी सेवा करते हो तो एक का पदम गुना जमा होता है। वही सेवा करते हो? नहीं, बहन जी ने बताया था, इन्होंने बताया था, किसी देहधारी को स्मृति में रखते हुए, सामने रखते हुए अगर आप सेवा करते हो तो कौन रिटर्न देगा? किसकी स्मृति में आपने सेवा किया? किसके श्रीमत के अनुसार सेवा किया? वो जरूर जानना चाहिए। तब का बुद्धि के अंदर सेवा करने से पहले बुद्धि के अंदर स्पष्ट होना चाहिए कि मैं जो कहां भी सेंटर में आप झाड़ू लगाओ, सफाई करो, हम किचन में काम करो, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, कोई भी कर्म करते हो तो किसके श्रीमत के अनुसार करते हो और किसके करते हो? अगर ये स्मृति में है, स्मृति मतलब बुद्धि, बुद्धि के अंदर याद है, मैं शुभ बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहा हूं, अगर यह स्मृति में रखकर इस यज्ञ की आप कोई भी सेवा करते हो तो एक का पदम गुना जमा होता है। ये विधान जानना चाहिए। अगर यह स्मृति नहीं है, दुनिया में भी लोग देख लो बहुत सेवा करते हैं, सोशल वर्कर है, कितने लोगों को खाना देते हैं, किसी का पाव लंगड़ा है, पाव ठीक नहीं, उसको पाव देते हैं बना करके, बहुत प्रकार की मदद करते हैं, लेकिन किसकी करते हो? हमको एक व्यक्ति मिला तो कहने लगा, कोई भी कितना भी बीमार हो उसको हर प्रकार की दवाई, हर प्रकार की हम सुविधा देंगे। तो हमने कहा, आप तो आधा सेवा करते हो। कहते कैसे? तो हमने कहा, एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, शराब पी करके गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पाव टूट जाता है, आपने उसको पाव नया बना के दिया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दी, बहुत अच्छा हो गया, और कल फिर से गाड़ी चलाता है, फिर से शराब पी के गाड़ी चलाता है, फिर एक्सीडेंट होगा। तो आपने शरीर को ठीक किया, आत्मा के लिए नहीं किया, आधा काम किया। तो दोनों चाहिए, जीव और आत्मा। कहा जीव शरीर की हम सेवा किया, उसको किसी को दान दिया आपने, शरीर समझ के, गरीब समझ के दिया। गरीबों को दान सभी देते हैं, लेकिन वो भी किसको देखा, अपने शरीर को देखा। तब कहा दान देते समय भी पात्र को देख के दान दीजिए। कौन दान लेने वाला, कौन पात्र चाहिए। नहीं तो रामायण में क्या हो गया, सीता को कौन लेके गया? सीता को इतना पता नहीं था, सीता कोई साधारण नारी नहीं है कि सामने कौन आया उनको पता ही नहीं चला, तो साधारण नारी बना दिया सीता को वहां। नहीं, वो तो श्री राम की धर्मपत्नी है, तो उनको पता नहीं चला सामने कौन है। तो इधर भी कहा दान करते समय पात्र को देखो, ये कौन है। तो ये कहां है? तब बाबा ने कहा दुनिया में आज तक सारे वर्ल्ड एजुकेशन के अंदर, सारे विश्वविद्यालय के अंदर बुद्धि का ज्ञान नहीं है। साइंस ने पढ़ाया कॉन्सियस एंड सबकॉन्सियस, तो बुद्धि कहां है? आज सारे यूनिवर्सिटीज में आप देख लो पढ़ाई पढ़ाया जाता है एकाग्रता, ध्यान दे दो। मुझे लगता है भाई जी मुझे ही देख रहा है, सुन भी रहा है ना, तो लगेगा इसका पूरा ध्यान मेरे ऊपर है, इधर ही है पूरा। लेकिन तन यहां है, आंखों से इधर ही देख रहा है, मन भी सुन रहा है, लेकिन समझ कहां है? यहां बैठे सुनते सुनते और एक याद आता है, अरे 2 बजे ये काम करना चाहिए, शाम को बाबा आएगा, मुझे आगे आगे आके जल्दी आके बैठना, कुछ प्लान चल रहा है। तो क्या सुना रहा हूं तो समझ में ही नहीं आया, है ना। मुरली सुनते हैं हम, देखना आप मुरली सुनने बैठते हैं, सुनते भी है, आंखें भी खुली है, एक ही जगह देख रहे हो, देखने वालों को लगता है इनका पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही है, मुरली पर पूरा है। फिर भी बच्चों को स्कूल में भी कहा जाता है प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान दे दो। तो ध्यान क्या चीज है? तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा आकर के तीसरा नेत्र देता है। नहीं तो अगर दुनिया में ज्ञान होता था तो शिव बाबा की जरूरत ही नहीं है, तो भगवान आके क्या पढ़ाता है? स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, तो शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखाता है? और कोई है? हां, जो दुनिया में आज तक नहीं है। तब ज्ञान का सागर स्वयं, जो कमी है तो उसके लिए जीवन में परिवर्तन करने के लिए ऐसी चीज सिखाता है ज्ञान, जो दुनिया में आज तक किसी ने किधर भी नहीं सुनाया। तब आया दुनिया में, कहते एजुकेशन के अंदर फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन, मन लगाइए। तो बाबा ने यहां का दिल मेरे से लगाइए, दिल में दिला राम को बिठाओ। तो दिल कहां है पता हो तो बिठाएंगे ना, तो भगवान आके क्या आपके दिल में बैठेगा? पहले पता होना चाहिए दिल कहां है, बुद्धि है। हमारी बुद्धि में अभी भी आप देख लो, यहां बैठे हुए भी, बाबा के सामने भी बैठते हो, मुरली सुनते हो, योग करते हो, तो देखना मन सोचता है मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंद हूं, चमक। अरे आज वो काम करना था, फिर आप उसको नाम देते माया आई, व्यर्थ संकल्प आया, कहां से आया हो, माया कहां है? तो इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक यूनिक है, स्वयं भगवान आके क्या पढ़ाता है। तो देखो एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, सारा विश्व एक हाथ से नमस्ते करता है। एक भारत देश है, 2 हाथ जोड़ता है। लेकिन आप कहेंगे 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, उसकी भी विधि है। मैंने 2 हाथ जोड़ा नमस्ते हुआ? नहीं, विधि है, छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। तो आत्मा के पास भी 2 हाथ है, एक है मन और एक है बुद्धि। अगर किसी को यहां से वहां तक चलना है तो 2 पांव चाहिए। तो हमारा मेडिटेशन योग भी एक यात्रा है, यहां से परम धाम तक। यात्रा पर कौन जाएगा? 2 पांव चाहिए। तो एक है मन जो सोचता है, उसके पास एक बुद्धि है, तो बुद्धि ये विचार अच्छा है, ये विचार गलत है, किस समय क्या विचार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा, मन और बुद्धि को ज्ञान के आधार से चलाओ। अगर मन बुद्धि को ज्ञान के आधार से नहीं चलाते हो तो अपने पुराने स्वभाव संस्कार के आधार से दोनों चलते हैं। मन बुद्धि खाली नहीं रहता है, आप इधर बैठे हुए आपके मन में बुद्धि के अंदर पुरानी बातें याद आएंगी, वो पुराने संस्कार के आधार से चलते हैं। तो मन बुद्धि को कैसे चलाना है, तो ज्ञान के आधार से चलाओ। तो जहां आप ले जाना चाहते हो तो वहां तक ये मन और बुद्धि, आज और कल भी बाबा ने कहा कि लाइन क्लियर और कनेक्शन क्लियर चाहिए। जैसे आप अगर मोबाइल के अंदर नंबर पूरा डायल करते हो सीधा लाइन चल दी जाती है, आवाज कनेक्शन भी आवाज क्लियर आता है। अगर नंबर ठीक डायल नहीं किया तो लाइन ठीक नहीं आए, आवाज दूसरा कुछ आता है, कनेक्शन भी ठीक नहीं चलता लगता है। तो लाइन क्लियर चाहिए यहां से परमधाम तक। बाबा ने कहा बच्चे कल आपको परमधाम जाना है, अपने घर जाना, लाइन क्लियर हो, कुछ हो जाए एक सेकंड के अंदर आप यहां से वहां। अगर आप इधर बैठे हो, आपने कभी दरवाजा देखा ही नहीं कहां से जाना है, एक ही दरवाजा पता है, एक ही दरवाजे में भीड़ होंगी। अगर सारे दरवाजे आपको पता है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, जहां खाली है वहां आप जाएंगे। तो जानकारी चाहिए। तब बाबा ने कहा कि बुद्धि को ये ट्रेनिंग चाहिए, किसी समय किसी प्रकार की परिस्थिति आने दो तो बुद्धि तुरंत निर्णय देती है। हां कभी कभी सेवा के स्थान पर कर्म करते करते हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्मों का प्रभाव बुद्धि पर ज्यादा होता है, कर्मों में लगन है, इसलिए कहा कर्मों में लगन होना भी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं, कर्म करने के लिए शरीर दिया है तो कर्म जरूर करना है। लेकिन उसके पहले बाबा ने कहा अमृत वेले सवेरे शाम को जब भी आप योग में बैठते हो तो ये मन, विचार शक्ति और ये बुद्धि, ये दोनों स्वच्छ होना चाहिए। अगर स्वच्छ दोनों होता है, लक्ष्य हमारा वही है कि दोनों अगर स्वच्छ है, इनके दोनों के द्वारा जो भी आप कर्म करते हो उस कर्मों का नाम है श्रेष्ठ कर्म। अगर नहीं तो आप कितना भी चाहो मुझे गुस्सा नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, आप चाहते नहीं हो, लेकिन करने वाला कौन, कर्म करने वाला कौन, ये मन और ये बुद्धि, ये दोनों स्वच्छ नहीं हुए हैं। उनके द्वारा जो भी कर्म होता है न चाहते हुए, तब हमारे पास एक नाम है, ड्रामा है, मेरा तकदीर ऐसा है, मेरा भाग्य ऐसा है, ये भूल गए कि इस समय संगम पर भाग्य विधाता स्वयं आया हुआ है बच्चों का भाग्य बनाने के लिए। और स्वयं भाग्य विधाता आकर के भाग्य बनाने की विधि बताता है, बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करो, अगर ऐसे ऐसे कर्म करते हो, ये कर्म एक जन्म नहीं, एक गारंटी देता है, कि जन्मों की गारंटी देता है, सारे कल्प के लिए है फिर भी गारंटी है 21 जन्मों तक ये फल देने वाली है। तब आज बाबा ने मुरली में कहा हम अपने लिए ही, अपने तन मन धन से अपने लिए ही स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अपना है तन मन, लेकिन वो कैसे लगा रहे हो, तो बुद्धि स्वच्छ चाहिए। सेवा करते करते किसी का ईर्ष्या, आज देखो हमारे जीवन में ब्राह्मण है, स्वच्छ है, ज्ञान सुनते हैं, समझ है, इतना तक सुना है, शास्त्रों में भी है, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, एक परिवार, किसी को भी पूछो मेरा बाबा कहेगा, तेरा बाबा और किसी का दूसरे का बाबा है, सबका एक बाप है, एक बाप के बच्चे, फिर भी देख लो ये मेरा सेंटर है, ये मेरा है, ये तेरा है, अभी भी स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी भी ज्ञान समझ में नहीं आया बुद्धि के अंदर। तो बुद्धि स्वच्छ न होने के कारण हमारे सेवा में, आचरण में, कर्मों में विघ्न है। अगर दिल स्वच्छ है, सब कुछ बाबा का, कोई भी कितना भी खराब हो, बहुत खराब व्यक्ति है, बहुत गुस्सा करता है, क्या आप ठीक कर सकते हो? किसी के पास कोई ताकत है तो बताओ। किसी के स्वभाव संस्कार बहुत गुस्सा करता है, परिवर्तन कर सकते हो? पूछ लो। अगर आपने महाभारत सुना हो, देखो महाभारत में दरबार में सारे राजाएं परिवार वाले सबके बीच में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है, किसी परिवार वालों ने उठ करके दुशासन को रोका? किसी परिवार वाले, दुनिया वाले तो नहीं है, और साधारण नहीं, भीष्म पितामह जैसे है, परिवार वाले, किसी ने दुशासन को रोका, द्रौपदी को मदद किया नहीं? चलो द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, भगवान ने भी आकर, श्री कृष्ण ने भी आकर के दुशासन को रोका नहीं, जिसने बुलाया द्रौपदी को मदद किया। लेकिन हम क्या चाहते, इनको चेंज करना है। मतलब अभी भी ड्रामा में हरेक का पार्ट अपना अपना है, यह समझ में नहीं आया है। अगर परिवार में रहते हुए यह समझ बुद्धि स्वच्छ है तो ज्ञान याद रहता है। अगर ज्ञान याद है, जीवन में परिस्थिति आती है, विघ्न आती है, समस्या आती है, हर एक एक कदम पर कोई ना कोई बात आती है, इसलिए ज्ञान रूपी अस्त्र दिया है, समय पर यह अस्त्र यूज करो। हां, 10 साल पहले बाबा ने यह कहा था, कल यह कहा था, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है उसको बाबा बहुत दफा उदाहरण देता है। कोई एक डॉक्टर है या वकील है, जज है, वकील है, एक वकील के पास देखो इतना नए नए कपड़े पहनेगा, इतना लोग आएंगे इस केस देने के लिए, एक के पास फटा हुआ कुर्ता है, मना कोट है, कुछ भी कमाई नहीं है। कारण, डॉक्टर के पास भी जाओ तुरंत ये दवाई बताएगा। डॉक्टर सभी है, मेमोरी पर बुद्धि स्वच्छ है। यहां भी जिसकी बुद्धि दिल स्वच्छ है, बाबा ने कभी कभी क्या क्या कहा है सब याद रहता है। जिस समय जो भी परिस्थिति आई, हां कल बाबा ने इसके लिए ऐसे करो कहा था, 1 महीने पहले बाबा ने कहा था, बच्चा ऐसी परिस्थिति आई एक काम करो। तो सारा ज्ञान किसके लिए है? सुनने के लिए नहीं, समझकर अंदर भर के रखो। ये सारे कल्प में सिर्फ संगम पर ही मिलता है। तब का सारे कल्प का आधार, जब स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर आकर के ये ज्ञान देता है, तब अभी हमारा जीवन हीरे जैसा बनता है। अगर सुनने के बाद भी धारणा नहीं हुई, धारणा अपने आप नहीं होती है, तो धारण करने की एक विधि चाहिए। तो वो एक विधि याद रखो, अगर इसके बिगर गति नहीं है, आप योग करने भी बैठो, देखो बैठते ही नींद आ जाती है। योग में बैठ जाने इच्छा है आपकी, नहीं तो दूसरे विचार आते हैं। कारण बुद्धि स्वच्छ चाहिए, ये बुद्धि योग है। जब तक बुद्धि योग नहीं लगा तब तक विकर्म विनाश नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक याद रखो, बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए हमने अपने जीवन में देखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, कोई फायदा नहीं। समझ में क्या आया? बुद्धि में क्या याद है? सारा दिन में पूछ लो, मुझे किसकी याद आती है? कोई भी मिला आपको, आपके मुख से क्या निकलता है? आप क्या सुनाते हो? पूछ लो, जो अंदर है वही निकलेगा ना। तब बाबा कहते हैं मुख से एक ज्ञान रतन निकलना चाहिए। पूछ लो किसी से मिलते, मेरे मुख से क्या निकलता है? अपनी बीमारी, अपना दर्द, अपनी समस्या, पर चिंतन, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हां किया, आप क्या कर रहे हो? तब कहा अगर जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, उसका तरीका है, बुद्धि स्वच्छ अपने आप नहीं होंगी, उसकी विधि चाहिए। जब भी आप मुरली सुनते हो, सुनते समय अच्छी तरह ध्यान से सुनते बैठो, सुनते सुनते देख लो आज बाबा ने मेरे लिए क्या सुनाया, मैं क्या करना चाहता हूं। हरेक का जीवन का लक्ष्य अलग अलग है, अपने लक्ष्य के अनुसार एक मुरली के पॉइंट ले लो और भाई लिख करके अपने जेब में रखो। ये ज्ञान धन है, नहीं तो सवेरे आपने सुना दिन तक याद नहीं रहता है। कोई इतना पुण्य आत्मा तो नहीं है, इस कलयुग के अंत में कोई इतना पवित्र बुद्धि नहीं है, तो बनाने हैं, बुद्धि को दिव्य बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो उसके अंदर अच्छी चीजें धारण करनी है, डालनी चाहिए। तो डालने का तरीका क्या? आप कहेंगे मैंने चार दफा मुरली पढ़ी, एक दिन प्रयोग करके देख लो आप, सवेरे से दो तीन दफा पढ़ो, फिर अगर आपको किसी ने पूछा आज मुरली में क्या कहा था, हां पढ़ा था मैंने, क्या पढ़ा था याद ही नहीं है, तो बुद्धि स्वच्छ नहीं है। तो बुद्धि को स्वच्छ करने की तरीका चाहिए, एक ही मुरली के पॉइंट ले लो जो आपको अच्छा लगा, लिखकर अपने जेब में रखो। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कम से कम सारे दिन में तीन दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को सवेरे एक दफा खाना खिलाया फिर, तो हेल्दी बॉडी स्वस्थ शरीर कमजोर आत्मा। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए तीन चार दफा मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं, एक मुरली का माता है लिख करके अपने किचन में रखो जहां आप रहते हो, जब भी मुरली क्लास के बाद जाने के बाद खाना खाने बैठे, खाना सामने आते ही ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ जेब में डालो, ढूंढने जाना नहीं मुरली कहां है, एक मुरली के पॉइंट अपने को पढ़ाओ, ये आत्मा के लिए भोजन है। ऐसे दिन में खाना आते ही तुरंत ढूंढने जाना नहीं, जेब से निकालो पढ़ो। ऐसे रात को कम से कम तीन दफा आज की मुरली के पॉइंट आप अपने आप को पढ़ाते हो तो बुद्धि के अंदर अच्छा खाना खिलाया आपने, तो बुद्धि स्वच्छ रहती है, दिव्य बनती है। सवेरे एक ही दफा नहीं, सवेरे दिन में शाम को एक मुरली के पॉइंट कम से कम सारे दिन में मिनिमम तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ, तब बुद्धि के अंदर यह ज्ञान याद रहेगा, ठहरेगा। फिर उसको और भी बढ़ाना चाहते हो, जब भी कोई भी मिले इधर उधर की बातें नहीं करना, कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि आत्मा का पाप मिटाए। तब दुनिया ने कहा चाहे चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे नारे भाई, आप कितनी भी चतुराई करो। तब कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया क्रोध मिटा नहीं सका है, तब स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर के ऐसी विधि बताता है, बच्चे ऐसी विधि ले लो, क्योंकि अंदर बुद्धि के अंदर कुछ चाहिए, ये चमत्कार नहीं है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो विधि चाहे एक मुरली के पॉइंट अगर बार बार पढ़ाते हो तो बुद्धि को याद रहता है, धारण हो जाता है। फिर जब भी कोई मिले सवेरे शाम को, जब भी बात करते हो बात करो, लेकिन आपके मुख से आज के मुरली के पॉइंट निकलनी चाहिए, आज बाबा ने यह कहा था, आज बाबा ने यह कहा था। अगर बार बार निकलता है तो यह पक्का संस्कार बन जाता है। तब देखना आज के बाद 10 साल के बाद आपके जीवन में ऐसी कोई बात आएंगी, हां जब मैं मधुबन में गए थे तब यह मुरली सुनी थी, बाबा ने यह बात सुनाया था, तुरंत याद आ जाएगा। क्योंकि धारण करने के बिगर, अंदर भरने के बिगर बाहर आएगा नहीं। आपने सुनी इधर बैठे समय लगता है आपको हमने सुना हम समझ लिया, बाहर जाते ही देख लो, क्योंकि हमारी अवस्था ऐसी है, ये अपने को जानना चाहिए, हमारी कोई बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं बनी है। तो उसका उपाय क्या है, निवारण क्या है कि यह बुद्धि को दिव्य बनाया जाए, स्वच्छ बनाया जाए, तो उसके अंदर ज्ञान रतन बार बार डालते जाओ। अगर ऐसे आप रोज एक 10-15 दिन करो, देखना उसके बाद जब आप योग में बैठते हो, देखना स्वच्छ बुद्धि अपने आप सीधा ऊपर जाती, इधर उधर भटकती नहीं है, कोई भी व्यक्ति परिस्थिति मान शान उसको खींचता नहीं है। तब कहते भगवान के साथ जुटती है, तो यह लौकिक स्थूल वस्तु व्यक्ति मेरा नाम होना चाहिए, ईर्ष्या वो बड़ा आगे हो गया उसको पाव खींचना, ये सब जो चल रहा है क्यों चल रहा है, आत्मा भूखी है, बुद्धि के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, उसके कारण एक कमजोरी होने के कारण जब भूख लगी आपको प्यास लगी जो पानी मिलागा वो पिएगा ना, आप कहेगा बहुत प्यास लगी तो पानी अच्छा प्योर फिल्टर चाहे नहीं मिल रहा है, जो मिला चलो बाद में देखा जाएगा पी लेंगे। तो आज मनुष्य आत्माओं की अवस्था है, इतनी तमो प्रधानता है किसी के प्रति भी हम कहते शुभ सोचो, दुआएं दे दो, आप देखना किसी पर नजर गई मन में क्या विचार आ रहा है, पूछ लो अपने आप को, देख लो इनको देखकर मेरे मन में क्या विचार आ रहा है। अभी भी दिल साफ नहीं है, उसके कारण मुराद हासिल नहीं हो रही है। जो बाबा कहते हैं दिल को स्वच्छ रखो, तो एक स्वच्छ रखने का तरीका रोज एक किसी ने पूछा आज की मुरली के पॉइंट क्या है, आपके मुख से तुरंत आना चाहिए आज बाबा ने यह कहा था। मुरली के अंदर चार सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, कोई भी जो आपको अच्छा लगा सहज लगा वो याद रखो। याद रखने का तरीका ये चाहिए, मुरली के पॉइंट लिखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, कम से कम तीन दफा अपने आप को पढ़ाना चाहिए, चौथा किसी को किसी न किसी को मुख से वर्णन जरूर करना चाहिए, तब ये संस्कार बनता है। अगर ये इतना करते हो तब देखना आपके बुद्धि रूपी दिल स्वच्छ है। कभी कभी आप देखना ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, आप क्या करते हो पूछ लो, आप बाबा को याद करते हो, बाबा को क्या याद करते हो, उस समय गीत की याद आ देगा, गीत सोचेंगे। एक्चुअली ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर बीच में कर्म करते करते बीच में कर्म योग कहा, कर्म करते करते कर्म बंद करके एक मिनट रुक करके बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे, आज मुझे बाबा ने क्या कहा था, आज सवेरे जो मुरली सुनी वो ट्रैफिक कंट्रोल आते ही याद आना चाहिए, तब बाबा और बाबा ने जो श्रीमद दिया वो याद आ गया। नहीं तो कर्म करते करते भूल जाते हैं, बाबा ने आज मुझे जो काम दिया भूल गए, याद ही नहीं है। तो बाबा की याद अर्था बाबा ओम शांति ओम नमः शिवाय, दक्ष भक्ति में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करेंगे, वो नहीं। यहां बाबा की याद क्या है, तो ट्रैफिक कंट्रोल बजा तुरंत याद आने चाहिए, जितने समय चार दिन में ट्रैफिक कंट्रोल बजता है उतने समय मुरली बार बार याद आना चाहिए, ये बाबा का श्रीमत है। तब आप कहते आज बाबा ने ये कहा था। तो अगर इस प्रकार अभ्यास करते हो दिल रूपी बुद्धि स्वच्छ है, इसके अंदर किसी ने कुछ गलत भी सुनाया वो अंदर जाता नहीं है, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ है, वो लेता भी ना उसको उसमें रस नहीं आता है। अगर दिल स्वच्छ नहीं है किसी ने कोई इधर उधर की बात सुनाई उसमें ज्यादा रस है, उसमें अट्रैक्शन है, तब अगर ऐसी बुद्धि हो, अगर वो योग में बैठे उनकी चलन श्रेष्ठ होंगी। अभी भी आप पूछो सत्युग में जाने लायक है, हम हर एक पूछो, ज्ञान में एक साल हो दो साल हो, अगर एक भी पूछ लो एक मिनट, एक क्रोध का 1% अंश भी रह गया तो सत्युग का टिकट मिलेगा, बाकी छोड़ दो। बाबा ने कहा हिम्मत का 1 कदम आप रखो, बाकी 4 कदम 4 विकार बाबा ले लेगा। 1 आप काम करो जो हमारे हाथ में है, सामने वाला गुस्सा करता है, सिंपल चीज है, तो ज्ञान समझ में आया ये भी बाबा का बच्चा है, इतना ही समझ है। हां गलत काम करता है, बहुत दुख देता है, बहुत परेशान करता है, तो क्या करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, गलत शब्द बोलना चाहिए, हां बोलो। 5000 साल के लिए फिर से हम अपने कर्म बंधन बना लेते हैं, आए थे कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, और यहां आने के बाद क्या कर रहे हैं, ज्ञान सुनने के बाद भी अज्ञानी से भी, अज्ञानी भी नहीं कहते उनके अंदर भी थोड़ा समझ है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, तब बाबा ने कहा समझ करके भी अगर कुछ गलत काम करते हो 100 गुना दंड मिलता है, समझ है। तो इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये नंबर 1 एक चीज चाहिए, दिल को स्वच्छ रखो। तो उसकी एक तरीका बताया कि दिल में मुरली के पॉइंट याद रहे, दूसरा और एक अभ्यास करो, कोई भी दिखाई देता किसी पर नजर गई देखते ही मन में उनके प्रति या दिल से उसके उनके प्रति दुआएं निकले, बाबा ये आपका बच्चा है, इस आत्मा का कल्याण करो, इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो। नहीं तो किसी पर नजर गई, अरे ये ऐसा क्यों, ये क्या, ये क्यों, ये ऐसा है, उनके अवगुण उन्होंने किए हुए कर्म वही याद रहता है, उनको देखते ही मन में फिर से गलत विचार आया, फिर से मन मैला हो गया, पुरानी बातें याद आ गई, फिर दिल और मैला हो गया। इसलिए दिल को स्वच्छ रखना चाहते हो, दूसरी विधि है किसी पर नजर गई। जैसे भक्ति में राम 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 करते जाते हैं मुख से, यहां मन से किसी को देखते ही शुभ बाबा इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो, ये आपका बच्चा, इसके औरों के प्रति शुभ सोचो। अगर ये दो काम करते हो अपने दिल को स्वच्छ रख सकते हैं। अगर दिल स्वच्छ है जो ज्ञान सुनते हो समझ में आता है, समझ में जहां आया हमारे आचरण बोल कर्म अपने आप परिवर्तन होता है। नहीं तो कितनी दफा भी आप मुरली सुनो, योग में बैठो, संस्कार परिवर्तन अपने आप नहीं होगा। तो तब बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहेब राजी है। अगर सच्चे दिल से ऐसे पुरुषार्थ करते हो, एक बात बताओ, रामायण में भी आता है कि एक बार राम वनवास में अकेला हो जाता है तो उस समय रावण की सैन्य उसके ऊपर हावी हो जाता है, राम के सारे अस्त्र खत्म हो जाता है, तब सोचता है क्या करूं, तब आकाशवाणी होते हे राम आपके पास ये अस्त्र यूज करो, तो तुरंत अस्त्र छोड़ता है, सब मूर्छित हो जाते हैं। अगर हम सच्चे दिल से रोज पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, तो समय पर कई ऐसी परिस्थिति आती है तो एकदम मूर्छित हो जाते हैं, क्या करो, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है, उस समय आपको याद देगा बच्चे ये काम करो। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को मदद करने आया है, ऐसे नहीं आया सिर्फ शिक्षा देने के लिए नहीं, समय पर ऐसी परिस्थिति आ जाए सच्चे दिल वालों को बाप मदद करने आया है। तो सच्चे दिल पर अगर बाप की मदद चाहिए तो सच्चाई से काम करना चाहिए। तो उसके लिए दो चीजें याद रखो, हम चाहते हैं झूठ नहीं बोलो, गुस्सा नहीं करो, कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन परिस्थिति कराती है, संस्कार कराती है, तो उसको मिटाने के लिए यह दवा है। एक मुरली के पॉइंट अगर रोज, और किसी पर नजर, कोई कितना खराब हो या अच्छा हो, किसी को देखते ही मन में अगर शुभ विचार करते हो तो दिल स्वच्छ है। तो ये आज बाबा भी दिलाराम बाबा आता है, बाबा ने कहा ऐसे बच्चों के दिल में बाप है और बाप के दिल में भी ऐसे बच्चे समाए हुए हैं। तो बाबा ने एक इसके पहले वाले मुरली में कहा था कि सारे बच्चे बाप के दिल में समाए हुए हैं, और आप पूछा हमारे दिल में कौन है, हां तो आज शाम को दिलाराम बाबा आएगा तो बाबा को लगना चाहिए सारे बच्चे मेरे दिल में समाए हुए। कौन से बच्चे है वो, स्वच्छ दिल वाले, जिसके दिल में बुद्धि में कोई कपट है, किसी को दुख बदला लेने की भावना, इनका ऐसा करना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया था, तो ऐसे दिल में दिलाराम बैठेगा। तो सोच लो दिल को स्वच्छ कैसे करना चाहिए, तब हमारी हर मनोकामना अपने आप पूर्ण होता है, बाप आया उसी काम के लिए, ये लक्ष्य चाहिए। ओम शांति।
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है, करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूह पानी प्यार नैनों में रूहानी प्यार बेहद में रहना नाहद में ठहरना सदा नदिया सबेते रहना है
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है
प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।